नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत जरूरी भी।
जी
जब किसी हंसते खेलते परिवार पर अचानक कोई त्रास दिया पड़ती है तो वो बिखरता कैसे और क्या वो फिर कभी पहले जैसा हो पाता है?
और इसी सवाल की गहराई में उतरती है जेम्स एजी की किताब ए डेथ इन द फैमिली।
हाँ
ये किताब वाकई में कलेजा थाम कर पढ़ने वाली चीज है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये लेखक के अपने जीवन का एक एक बहुत दर्दनाक सच है।
बिल्कुल। जेम्स एजी ने जब ये उपन्यास लिखा तो वो अपने बचपन के सबसे गहरे जख्म को फिर से खुरेद रहे थे।
जी
एजी अमेरिका के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, कमाल के लेखक थे। पत्रकार, कवि, फिल्म समीक्षक, सब कुछ।
और उनकी लिखाई पर उनके बचपन का जो उन्होंने साउथ अमेरिका में गुजारा था उसका गहरा असर दिखता है।
हाँ, उनकी भाषा में एक अजीब सी काव्यात्मकता है
हाँ,
और वो हमेशा भावनाओं के तह तक जाने की कोशिश करते हैं।
ए डेथ इन द फैमिली इसी कोशिश का नतीजा है।
और ये कहानी उनके अपने अनुभव पर आधारित है। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब एक कार एक्सीडेंट में उनके पिता की मौत हो गई थी।
और कमाल की बात यह है कि ये किताब ये तो एजी की मौत के बाद 1957 में छपी थी।
हाँ, उन्होंने इस पर सालों काम किया पर इसे पूरा नहीं कर पाए।
उनके दोस्तों ने उनके लिखे हुए पन्नों को जोड़ा और फिर दुनिया के सामने लाए।
ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है, एक अधूरी किताब को इतना बड़ा सम्मान मिलना।
और अगले ही साल 1958 में इसे पुलित्जर पुरस्कार मिला।
तो ये दिखाता है कि किताब के बिखरे हुए हिस्सों में ही कितनी ताकत होगी।
हाँ, और इसकी बनावट भी आम उपन्यासों जैसी नहीं है। इसमें मुख्य कहानी के साथ साथ यादों के कुछ धुंधले सपने जैसे हिस्से भी हैं।
जैसे नॉक्सविल, समर ऑफ 1915।
बिल्कुल, ये हिस्से इसे एक उपन्यास से ज्यादा एक शोक गीत, एक उदास नगमा बना देते हैं।
सही कहा, एक शोक गीत ही है और हर शोक गीत एक खूबसूरत याद से शुरू होता है।
इस कहानी की शुरुआत भी 1915 के नॉक्सविल टेनेसी की एक ऐसी ही शांत और प्यारी शाम से होती है।
और हमारी मुलाकात होती है फोलेट परिवार से।
जी, एक बहुत ही प्यारे और जिंदा दिल पिता हैं, मैरी उनकी पत्नी, जो बहुत धार्मिक और शांत स्वभाव की हैं, और उनके दो छोटे बच्चे, 6 साल का रूफस और 4 साल की कैथरीन।
और एजी इस दुनिया को बनाने में कोई कोई जल्दबाजी नहीं करते। वो हमें उस शाम की हर छोटी छोटी बात महसूस कराते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, लॉन में पानी छिड़कने वाले स्प्रिंकलर की आवाज, घास की महक, पिता के साथ होने का वो सुकून।
परिलान चार्ली चैपलिन की फिल्म देखने जाता है।
हाँ, और वो एक बहुत ही आम लेकिन खुशी से भरी शाम है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सब कुछ अपनी जगह पर है, सब कुछ महफूज है,
लेखक जानबूझकर इस प्यार और सुरक्षा के लिहाफ को इतनी बारीकी से बुनते हैं
ताकि जब ये फटे तो हमें उसका हर एक धागा टूटता हुआ महसूस हो।
और यही कहानी का असली संघर्ष सामने आता है।
जी,
यहाँ कोई अच्छा या बुरा इंसान नहीं है, कोई विलेन नहीं है। यहाँ तो एक परिवार का संघर्ष है उस अंधी बहरी ताकत से
जिसे हम मौत कहते हैं।
बिल्कुल। कहानी ये नहीं पूछती कि ये क्यों हुआ, क्योंकि मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है।
कहानी ये पूछती है कि अब इसके साथ जिया कैसे जाए।
और उस अंदर की दुनिया को तोड़ने के लिए बस एक आवाज काफी थी।
हाँ, एक फोन कॉल की आवाज।
देर रात जब वो फोन बजता है वहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है।
फोन जे के भाई रैल्फ का है, जो बताता है कि उनके पिता की तबीयत बहुत खराब है।
जे को थोड़ा शक होता है, उसे लगता है कि रैल्फ शायद बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है।
लेकिन फिर भी एक बेटे का फर्ज निभाने के लिए वो अपनी कार लेकर उस अंधेरी सुनसान सड़क पर निकल जाता है।
और उसका उस रात के अंधेरे में जाना सिर्फ एक सफर नहीं था,
वो उस परिवार की मासूमियत के अंत की शुरुआत थी।
यहाँ कार और टेलीफोन, ये दोनों चीजें बहुत दिलचस्प प्रतीक हैं।
हाँ,
ये मॉडर्न दुनिया की निशानियां हैं। टेलीफोन बुरी खबर नहीं कराता है, बाहरी दुनिया की दखलंदाजी का प्रतीक बनकर।
और कार जो जे को आजादी देती है वही उसकी मौत का कारण भी बन जाती है।
तकनीक जो हमें जोड़ती है वही हमें तोड़ भी सकती है।
बिल्कुल, जे के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी भर जाती है। मैरी इंतजार करती है, हर आहट पर उसका दिल धड़कता है।
अगली सुबह फोन फिर बजता है।
लेकिन फोन पर जे नहीं है, एक अजनबी की आवाज है जो बस इतना कहता है कि एक गंभीर दुर्घटना हुई है। बस यहीं से मेरी की उम्मीद डर में बदलने लगती है।
और फिर जो होता है वो किसी फिल्मी सीन की तरह नहीं है, वो बहुत ही बेढंगा, क्रूर और असलियत के करीब है।
हाँ, जे का भाई राल्फ नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ घर आता है। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है।
और उसकी टूटी फूटी बातों से पता चलता है कि हुआ क्या है।
घर लौटते समय जे की कार के स्टीयरिंग में लगी एक छोटी सी पिन, एक क्वार्टर पिन टूट गई।
बस इतनी सी बात?
हाँ बस इतनी सी बात। कार बेकाबू हो गई और जे के मौके पर ही मौत हो गई। मौत का कारण इतना मैकेनिकल, इतना छोटा और इतना बेतुका है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है।
कोई बड़ी वजह नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक पुर्जे की खराबी, और यही बात इस त्रासदी को और भयानक बना देती है, ये बेतुकापन।
जी
इंसान अपनी जिंदगी को कितना कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक छोटी सी पिन के आगे बेबस है। इस सच का सामना करना उस परिवार के लिए पहाड़ टूटने जैसा था।
और इसके बाद जो सीन आता है, सच कहूं तो ये पढ़ते हुए कलेजा मुंह को आ जाता है।
जब मैरी और उसकी चाची हन्ना को
सोते हुए रूफस को जगाकर ये बताना पड़ता है कि उसके पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। आप सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी।
एक बच्चे को ये कैसे समझाएं कि कभी नहीं का मतलब क्या होता है?
वही तो, रूफस की प्रतिक्रिया एक बच्चे के मन की उलझन को दिखाती है। वो मर गया या चला गया जैसे शब्दों का वजन नहीं समझ पाता। उसे बस इतना पता है कि कुछ बहुत बड़ा बदल गया है। उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी, लेकिन उसका छोटा सा मन इस सच्चाई को पचाने के लिए तैयार नहीं था। और यहीं से हम रूफस की नज़रों से शोक की इस यात्रा को देखना शुरू करते हैं।
और रूफस के नज़रिए से लिखे गए हिस्से तो कमाल हैं। वो कोई सीधी सादी कहानी नहीं सुनाते।
नहीं,
एजी हमें सीधे उस 6 साल के बच्चे के दिमाग में फेंक देते हैं, जहां सब कुछ टूटा फूटा है, आवाजें हैं, बड़ों की आधी अधूरी बातें हैं, कन्फ्यूजन है।
इसे लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं।
पर असल में ये एक बच्चे की सच्चाई को कागज पर उतारने का एक बहुत ईमानदार तरीका है।
हाँ, रूफस के लिए ये सब एक अजीब तमाशे जैसा है। घर रिश्तेदारों से भर गया है, लोग फुसफुसा रहे हैं,
उसे नए कड़े कपड़े और एक टोपी पहनाई गई है,
और उसे अचानक सबसे बहुत तवज्जो मिल रही है, और एक पल के लिए उसे इस पर गर्व होता है।
लेकिन अगले ही पल वो इस गर्व के लिए शर्मिंदा हो जाता है।
ये कितने सच्चे और उलझे हुए भाव है।
बिल्कुल, और यही पर उपन्यास हमें शोक का पहला चेहरा दिखाता है, एक बच्चे का हैरान भ्रमित शोक।
लेकिन फिर दूसरे चेहरे भी हैं, जैसे रूफस की माँ मैरी का शोक।
वो कैसे इस त्रासदी से जूझती है?
मैरी बहुत धार्मिक औरत है, उसका विश्वास भगवान में बहुत गहरा है, लेकिन जय की मौत वो उसके इस विश्वास की नींव हिला देती है।
वो प्रार्थना करती है, वो भगवान से जवाब मांगती है,
लेकिन उसे सिर्फ खामोशी मिलती है। उसकी पूरी यात्रा इस बात का संघर्ष है कि एक प्यार करने वाला भगवान इतनी बेतुकी क्रूर मौत कैसे दे सकता है।
और यहीं पर विश्वास और शक का जो टकराव है वो साफ दिखता है।
जी, मैरी प्रार्थना में जवाब ढूंढ रही है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता।
बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मैरी का भाई एंड्रू।
हाँ, एंड्रू, वो भगवान में विश्वास नहीं करता, वो एक अज्ञेयवादी है। उसके लिए जय की मौत एक बेतुका मैकेनिकल हादसा है और कुछ नहीं।
और जब वो मैरी को प्रार्थना करते और धार्मिक बातों से दिलासा पाते देखता है तो उसे
गुस्सा आता है, उसे ये सब कमजोरी लगता है।
और एक कमाल की बात यह है कि एजे किसी का पक्ष नहीं लेते।
नहीं,
वो ये नहीं कहते कि मैरी की आस्था सही है या एंड्रू का गुस्सा, वो बस इन दोनों को एक साथ दिखाते हैं एक ही छत के नीचे।
ये आज भी कितना सच लगता है कि जब कोई त्रासदी होती है तो कोई एक सही तरीका नहीं होता उससे जूझने का।
सही कहा। उपन्यास हमें ये समझने की जगह देता है कि गुस्सा और प्रार्थना दोनों ही शोक का हिस्सा हो सकते हैं।
हाँ, और इन सब के बीच जे की याद है। भले ही कहानी की शुरुआत में ही उसकी मौत हो जाती है, पर ऐसा लगता है कि वो हर पल वहाँ मौजूद है।
उसकी अनुपस्थिति ही कहानी की सबसे बड़ी उपस्थिति बन जाती है।
बिल्कुल, बाकी किरदारों की बातों और यादों से हमें पता चलता है कि जे कैसा इंसान था। जिंदगी से भरपूर, अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला। वो उस घर का केंद्र था, और अब वो केंद्र बिखर चुका है।
और इस बिखरे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश करते हैं बाकी के रिश्तेदार। वो भी शोक के अलग अलग रंगों को दिखाते हैं।
तेरा आया था।
वो अंतिम संस्कार का इंतजाम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद अपने दुख और शराब की लत में डूबा हुआ है।
उसका दुख बहुत बेढंगा और शोर मचाने वाला है।
वो शोक की प्रक्रिया में एक असहज लेकिन सच्ची हकीकत को जोड़ता है।
तो हमारे पास शोक के कई रूप हैं। बच्चे का भ्रम, माँ का टूटा हुआ विश्वास, चाचा का गुस्सा, चाची की मजबूती
और भाई का बिखराव। एजी हमें दिखाते हैं कि शोक कोई एक भावना नहीं है, ये भावनाओं का एक पूरा सैलाब है।
हाँ, और रूफस इस सैलाब के बीच में खड़ा है। वो देखता है कि बैठक में एक बड़ा सा बक्सा
यानी ताबूत रखा है जो बंद है। उसके अंदर उसके पिता हैं, पर वो उन्हें देख नहीं सकता।
उस बंद ताबूत में उसके लिए एक डर भी है और एक अजीब सा खिंचाव भी।
वो समझना चाहता है पर समझ नहीं पाता।
वो बंद ताबूत शायद मृत्यु के रहस्य का ही प्रतीक है। हम जानते हैं कि वो है, पर हम उसके पार नहीं देख सकते। और एक बच्चे के लिए ये रहस्य और भी गहरा होता है।
उपन्यास का अंत किसी बड़े नाटकीय मोड़ से नहीं होता।
नहीं,
कुछ दिनों बाद रूफस अपने अंकल एंड्रू के साथ टहलने निकलता है। एंड्रू, जो विज्ञान और तर्क में विश्वास करता है, उसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है कि मौत क्या होती है।
कोई भगवान नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, बस शरीर काम करना बंद कर देता है।
वो उसे एक तर्क संगत सांत्वना रहित सच देने की कोशिश कर रहा है।
हाँ, और तभी एक बहुत खूबसूरत चीज होती है।
वो देखते हैं कि जे के कब्र पर रखी ताजी मिट्टी पर एक तितली आकर बैठती है।
वो कुछ पल वहां रहती है, अपने पंख फड़फड़ाती है
और फिर उड़ जाती है। बस इतना ही, एक पल का दृश्य,
पर उस एक पल में बहुत कुछ छिपा है।
हाँ,
एंड्रू के लिए वो शायद सिर्फ एक कीड़ा है, लेकिन रूफस के लिए और हमारे लिए जो पढ़ रहे हैं,
वो तितली क्या है? क्या वो आत्मा का प्रतीक है, पुनर्जन्म का, या बस प्रकृति की खूबसूरती का एक पल?
इजिस का कोई सीधा जवाब नहीं देते, और यही संत की खूबसूरती है।
वो तितली उस रहस्य का प्रतीक बन जाती है जिसे न तो मैरी का विश्वास पूरी तरह समझा सकता है
और न ही एंड्रू का संदेह पूरी तरह खारिज कर सकता है। कहानी एक सवाल पर खत्म होती है, जवाब पर नहीं।
और ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था,
कि ये उपन्यास आसान जवाबों के बारे में है ही नहीं, ये मुश्किल सवालों के साथ जीने के बारे में है।
अंत में जय का शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन उसका प्यार और उसकी यादें उसके परिवार के साथ रह जाती हैं, और शायद यही वो चीज है जो उन्हें इस त्रासदी के बाद भी जोड़े रखेगी।
ये कहानी हमें सिखाती है कि दुख को बिना किसी बनावट या आसान सांत्वना के उसकी पूरी ईमानदारी और जटिलता में स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है।
और ये भी कि प्रेम और स्मृति में एक ऐसी स्थायी शक्ति होती है जो मृत्यु के बाद भी रिश्तों को जीवित रखती है। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।